नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पादकता और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की विविध जलवायु परिस्थितियों का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण परिवर्तन से संबंधित वेबिनार को संबोधित करते हुए देश के कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उच्च मूल्य की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में उच्च मूल्य वाले कृषि पर भी ध्यान दिया गया है।
बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। दक्षिण के हमारे जो राज्य है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं, केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।
श्री मोदी ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न जलाशयों और तालाबों में लगभग 4.5 लाख टन मत्स्य पालन हो रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित जनजन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी और नई न्याय संहिताओं पर केन्द्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। श्री शाह राज्य के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री अमित शाह ने कल ओडिशा में 3,770 करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की विकास पहल और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। श्री शाह ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की पारादीप इकाई में सल्फ्यूरिक एसिड के 3रे संयंत्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं ओडिशा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र घरेलू उत्पादन को मजबूत करेगा और इससे रसायन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी।
इप्को का सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक विराट कारखाना लोकार्पित हुआ। इस कारखाने के माध्यम से इप्को अब सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर होगा और आने वाले दिनों में इप्को और क्रिप्को मिलकर पूरे देश को सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में आत्मनिर्भर करेंगे।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही में अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा निर्धारित है। पिछले महीने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विपक्ष ने लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें लोकसभा अध्यक्ष पर पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई थी। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग श्रेणी के अंतर्गत संचालन के लिए लाइसेंस दिया गया है। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हिंसक जेनजी विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए पहले आम चुनाव में बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से 28 सीटों के अंतिम परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं और 97 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। इसराइल और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं और ईरान के बीच संघर्ष का आज 8वां दिन है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते से इनकार करते हुए उसके बिना शर्त समर्पण की मांग की है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि कुछ देशों ने अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना कनाडा के विक्टर लाई से होगा। प्रतियोगिता में कल रात लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शी फिंग को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।